नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेद् मुदीरये। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। नम ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक 3 और 4। 3 नंबर श्लोक में भावार्थ नहीं है, 4 नंबर श्लोक का ऊपर चर्चा होगा। पहले मैं 3 नंबर श्लोक पाठ कर लेता हूँ, तो 4 नंबर श्लोक मेरा पीछे फिर उच्चारण करने का। ॐ नमः भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षण शीलव्रताय नमः उपशिक्षितात्मनः उपशीतलोकाय नमः साधुवादनिकषणाय नमः ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः इति। इसका अनुवाद इस प्रकार की है। हे प्रभु, मैं ओंकार का बीज मंत्र के जप से आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मैं उन भगवान की सादर नमस्कार करता हूँ जो उत्तम पुरुष में सर्वाधिक है। आप आर्यजनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाला है और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले हैं। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की ही परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पर्शमणि है जिससे समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मण के द्वारा उपासित है। हे परम पुरुष, आप महाराज है, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। 4 नंबर श्लोक मेरा पीछे दोहराइए। जत दिशु धानु भवमात्रम एकम् स्वतेजसाधुस्तगुणव्यवस्थम् प्रत्यक्क प्रशान्तम् सुदियोपलब्धम् ह्वानाम रूपम् निरहम् प्रपद्ये। शब्दानुवाद। जत जो तत उस परम सत्य को विशुद्ध विशुद्ध भौतिक प्रकृति के स्पर्श से दूर अनुभव अनुभव मात्रम सचिदानंद दिव्य देह एकम एकमात्र स्वतेजसा अपने तैसे ध्वस्त ध्वस्त गुण व्यवस्थम गुण का प्रभाव प्रत्येक दिव्य भौतिक नेत्रों से अदृष्ट प्रशांतम धीर विक्षोभ रहित सुधिया कृष्ण भावना से जो भौतिक कामनाओं कर्म तथा कल्पनाओं से अप्रभावित है उपलब्धनम उपलब्ध किया जा सकने वाला ही निसंदेह अनाम रूपम नाम तथा रूप रहित निरहम अहंकार रहित प्रपद्ये मुझे नमस्कार करने दे। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरण भक्ति विदान स्वयं शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की भगवान को जिनका विशुद्ध रूप सच्चिदानंद विग्रह भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेज बस वह भौतिक प्रकृति के कलम से अछूता है और भौतिक दृष्टि से पर है अप्रभावित है अतः वह दिव्य है। न तो वह कोई कर्म करता है न उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल कृष्ण भावना में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमल में दृढ़तापूर्वक स्थित होकर उनको सादर नमन करें। तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण अनेक रूप में प्रकट होते हैं जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5:39 में बताया गया है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमानोय गोविंदमादि पुरुष स्तमः भजामि। मैं पूर्ण पुरुषतम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ जो राम नृसिंह जैसे अवतार तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है किंतु जो मूल रूप में भगवान कृष्ण है और स्वयं भी अवतरित होते हैं। कृष्ण विष्णु तत्व तो है जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूप में विस्तारित किया है जिसमें से भगवान रामचंद्र एक है। यह ज्ञातव्य है कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर रहन करते हैं और उनके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। अतः हमें संशय हो सकता है कि रामचंद्र जी भी उसी कोटि में आते हैं क्योंकि उनको गरुड़ ने नहीं वरन हनुमान जी ने धारण किया और उनके न तो चार भुजाएं थी न ही उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि रामचंद्र तथा कृष्ण में अंतर नहीं है। रामादि मूर्ति सुकला यद्यपि कृष्ण मूल श्री भगवान है किंतु रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुण से अप्रभावित रहने के कारण भगवान रामचंद्र जी प्रशांत है। जब तक भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता है तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता है। उन्हें भौतिक चक्षु से नहीं देखा जा सकता है क्योंकि रावण जैसे असुरों के दिव्य दृष्टि नहीं होती। अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी नित्य अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा किंतु रावण सीता देवी को उनके वास्तविक रूप में नहीं ले जा सका। जो ही रावण ने उनका स्पर्श किया उन्होंने भौतिक रूप तो उसे समर्पित कर दिया किंतु अपने मूल रूप को बनाए रखा जो उसकी बुद्धि के परे था। इसलिए इस श्लोक में आगत प्रत्येक प्रशांतम यह सूचित करता है कि भगवान रामचंद्र तथा उनके तेज स्वरूप अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखते हैं। उपनिषद में कहा गया है यम एवैश वृणुते तेन लभ्यः। परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति के उत्प्रत है। ब्रह्म संहिता में 5:38 में कहा जाता है प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्यम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषस्तमः भजामि। मैं उन आदि पुरुष गोविंद का भजन पूजा करता हूँ जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं, जिनके आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है, वे भक्त के हृदय के भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, एतास्तेर्नो देवता अनेन जीवेन। जहाँ अनेन शब्द से आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया है, त्रिष्टो देवता से यह सूचित होता है कि जीव देह तीन भौतिक तत्व अग्नि पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यदि भी परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु जीवात्मा की देह से कोई सरकार नहीं रहता है, इसलिए परमात्मा को अनाम रूप निरहम कहा गया है। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं है किंतु जीवात्मा की होती है। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय, अमेरिकी या जर्मन कहकर दे सकता है, किंतु परमात्मा का ऐसा कोई भौतिक नाम नहीं होता है। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न होता है किंतु परमात्मा ऐसा नहीं है। उसका नाम और वो स्वयं एक है। निरहम का यही तात्पर्य है। इसको तोड़ मरोड़ कर यह अर्थ नहीं निकला जा सकता है कि परमात्मा अहंकार रहित या स्वरूप भिन्न है। उनका रूप दिव्य स्वरूप है। श्री जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के एक दूसरा ही विवेचन किया है जिसमें निरहम का अर्थ निश्चयेन अहम है। निरहम का अर्थ यह अर्थ नहीं है भगवान के कोई स्वरूप नहीं, वरन अहम शब्द पर बल होने से यह सिद्ध होता है कि भगवान का अपना स्वरूप है, क्योंकि निर का अर्थ है केवल नकारात्मक न होकर पुष्टि करने वाला ही होता है। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाजन शलाकया चक्रुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरुच्युतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजतं सहगणा रघुनाथानीतं तं सजीवम् साद्वैतम सवधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदन सहगन ललिता श्री विशाखानीताश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितान पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी कृष्ण मलारा का मंदिर का ओर से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप पीछे को मोड़ के थोड़ा देख लीजिएगा, भक्त लोग थोड़ा बाहर खड़े हैं। थोड़ा आप कृपा करके हमारे तरफ से अनुरोध है, थोड़ी से आगे तरफ आइए। जो बाहर पहली बार वृंदावन आए उनको थोड़ा मौका मिलने बैठने के लिए कृष्ण बलराम हॉल पे। कार्तिक महीना जो है बहुत महत्वपूर्ण महीना है, और इस महीना में आप लोग का आशीर्वाद से और आप लोग का कृपा से बहुत सारे भक्त लोग का इच्छा भी थी, क्योंकि कार्तिक महीना में क्लास मिलना बड़ा मुश्किल होता है। भक्त लोग को पूछ रहे थे कब क्लास होगा, सेमिनार होगा, क्योंकि ऐसा टाइम पे सेमिनार और क्लास देना हमारा पक्ष में नहीं हो पाता है, मैनेजमेंट का ऊपर डिपेंड करता है। और बहुत सारा मंदिर से बहुत सारा वरिष्ठ भक्त आए हैं, कुछ मेरा बोलने में त्रुटि रहेगा तो आप लोग को क्षमा कर दीजिएगा। और यहाँ पे आज का जो श्लोक है बता गया है, तीन श्लोक में चर्चा करने के लिए, तीन श्लोक से दो श्लोक तो भागवत का हो गया, और एक श्लोक आप सुनते आ रहा है दामोदराष्टकम। आज कितना नंबर श्लोक है? चार नंबर श्लोक है। चार नंबर श्लोक इधर अपडेट करने के कोई है, चार नंबर श्लोक का ये सभी को तो याद होगा, मेरा पीछे दोहराइए, बरम देव मुख्य न मुख्यम बधी बा नचान्य ब्रोणे अहम बरसाद पीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालम सदा मे मनसा विरस्ता कि अन्य ये दामोदर अष्टकम बहुत महत्वपूर्ण ये श्लोक है। ये श्लोक से आपको क्या पता लगता है, क्या बता सकते हैं? प्रत्येक दिन हमें पढ़ रहा है, कभी भी कोई भी श्लोक हमें पढ़ते हैं उसको ध्यानपूर्वक समझना चाहिए और ध्यानपूर्वक शब्द को देखना चाहिए। जो आठ श्लोक है, आठ श्लोक में तीन श्लोक, पहला तीन श्लोक एक दो तीन नंबर तक विनम्रता का साथ प्रार्थना कर रहा है। सत्यव्रत मुनि ने प्रार्थना कर रहे तीन श्लोक को पूरा बहुत महत्वपूर्ण है। तीन श्लोक पहला ये प्रार्थना का, और जो चौथा श्लोक है और पांच नंबर श्लोक है, दो श्लोक में कुछ नहीं चाहता हूं। इसलिए कहते हैं बरम देव मुख्य न मुख्यम बधिवा, मेरे को मुख्य भी नहीं चाहिए। जो चार पुरुषार्थ है धर्म अर्थ और काम मुख्य, वो भी नहीं चाहता हूं। इसलिए बरम देव, हे देव, आप सब प्रकार के वर देने वाले पूर्ण समर्थ हो, तो भी मैं आपसे चतुर्धा पुरुषार्थ रूप में मुख्य या मुख्य की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक का भी नहीं चाहता। अभी आप लोगों से पूछा जाएगा आप वैकुंठ जाना चाहेंगे नहीं जाएंगे, सभी लोग का हाथ उठाए हैं वैकुंठ जाना है और यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं मैं वैकुंठ जाना नहीं चाहता। और न मैं श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाले कोई दूसरा ही वर आपसे मांगता हूं। नवदा भक्ति में करने वाले का वो भी नहीं चाहता हूं। और क्या चाहते हैं? हे नाथ, मैं आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांग रहा हूं, कृपा करके मैं भिक्षा मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हैं? आपका जो यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे, मुझे और दूसरे वरदान के कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए कहते हैं सदा में मनुष्य भी रास्तम की मान नहीं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? बाल गोपाल रूप मेरा हृदय में प्रत्येक समय में मैं परमात्मा रूप में और भगवान को बाल गोपाल रूप में दर्शन कर सकूं, ये उनका कुछ नहीं चाहता हूं। और हम लोग तो मंदिर आते तो पहला लिस्ट ही होता है, हमारा पहला लिस्ट ही होता है। इसलिए कहते हैं बहुत सारे आप लोग सुने हुए जो कि हमको कुछ नहीं चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर की भजन गाते हैं, प्रभु तब पद जुगे मोर निवेदा, मेरा निवेदन है आपका चरण कमल दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहा हूं। नाही मागी देह सुख विद्या धन जन, मेरा कुछ नहीं चाहिए, भक्ति विनोद ठाकुर का प्रार्थना से। और दूसरा में हम लोग प्रत्येक दिन सुबह जो शिक्षाष्टकम पाठ करते हैं उसमें हमें बोलते हैं, सिर्फ कभी प्रैक्टिकल अपना जीवन में उतारा? किसको हम भी अभी हमें दक्षिणा दें कोई मना करेगा? अभी प्रैक्टिस करते हैं, अभी किसका घर पे जाते हैं, कोई कीर्तन भी होता है, कितना देना है, सही? ये प्रैक्टिकल जीवन में कैसा उतारना है? भागवत ऐसा नहीं कि भागवत कक्षा में आना मतलब भागवत का शब्द को अपना जीवन में उतारना है। बताएंगे भागवत श्लोक अभी जब आएगा, लेकिन ये श्लोक से हमको मालूम पड़ता है कुछ नहीं। इसलिए न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामय है, मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवताद भक्तिर हैत्यु की तोई, मेरा कुछ नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए? कितने लोग को धन नहीं चाहिए, हाथ उठाए थोड़ा, सिर्फ दो लोग उठा रहे हैं। देखिए धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, हाँ हो सकता है धन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, लेकिन कभी भी एक चीज अपना पीछा नहीं छोड़ता, वो क्या है? प्रतिष्ठा, कभी भी वो पीछा नहीं छोड़ता है। सभी का जीवन में है, सभी का जीवन में है। कभी भी हम उन लोग को मंदिर का नहीं, बाहर का भी कर्मी जगत में और मंदिर पे भी हम कभी भी पोस्ट पोजीशन थोड़ा मिल जाते हैं। बाहर पे भी देखिए, कर्मी जगत में भी अपना प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ता। ये धन छोड़ सकता है, परिवार रिश्तेदार छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा छोड़ना इतना आसानी नहीं। और यहां पे बता रहा है, जन्मन जन्मनेश्वरे भवतात भक्ति हैतु की तोई। तब ये दो श्लोक से ये जो बरंदेव मुख्य न मुख्यम बधिवा नचन्य ब्रुणे हम बरसाद अपी हम, मेरा को इस प्रकार के वरदान दीजिए जो कि मेरा हृदय में बाल गोपाल रूप को मैं हर दिन दर्शन कर सकूं, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। और इसी प्रकार प्रार्थना प्रत्येक दिन त्रिसंध्या में होना चाहिए। देखिए त्रिसंध्या में तीन प्रार्थना को ध्यान पूर्वक मेरा पीछे सुनिए क्या लिखा होता है, और तीन प्रार्थना को आप लोग को हर दिन को इसको रटना चाहिए। रात को सोने का पहले क्या बोलना चाहिए, हे मेरा पीछे आप बोलिए, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, जब मेरी मौत आवे और मेरे अंतिम श्वास के साथ, जब आप मेरे तन से बाहर निकले, तब आपका नाम उच्चारण करवा देना। प्रभु भूल मत करना। ये सोने का पहले प्रार्थना होना चाहिए। और प्रातः उठते ही क्या प्रार्थना होना चाहिए, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, इस समय से लेकर रात को सोने तक मैं जो कुछ भी कर्म करूं वह सब आपका समझ कर करूं, और जब मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करा देना। और स्नान करने का टाइम पे क्या याद करना प्रार्थना है, हे मेरे प्राणनाथ गोविंद, आप कृपा करके मेरे दृष्टि ऐसी कर दीजिए कि मैं प्रत्येक कण कण तथा प्राण प्राणी मात्र में दर्शन कर सको। ये तीन प्रार्थना को पूरा ध्यान पूर्वक सोने का पहले और प्रातः उठते ही और स्नान करने का टाइम पे ये प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को दिव्य दृष्टि के साथ दे। तब आज के श्लोक का ऊपर जाते हैं, श्रीमद् भागवत में। भागवत किसके लिए है, क्या भागवत पुराण में जाता है और भागवत सुनने से क्या होता है, पहले हमें भागवत का ऊपर चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद श्लोक का ऊपर आता हूं। भगवान जब ये धरती छोड़ के चले गए, श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद 3 अध्याय और श्लोक नंबर 43 में सभी को ये श्लोक याद होगा। और ये श्लोक में कहते हैं, भगवान जब चले गए तब ये लास्ट क्वेश्चन था, जो 6 क्वेश्चन था सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने जो क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से ये श्लोक था, क्या था, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञान भी आदि सह कलहु नष्ट दुषामेश पुराणक अधुनेत्य। कृष्ण सुधाम जब चले गए उनका शासन क्या लेकर चले गए, धर्म और ज्ञान आदि भी सह, ये सब लेकर चले गए, लेकिन कलिजुग लोग के लिए क्या छोड़ कर गए, क्या छोड़े, भागवत। इसलिए कहते हैं कलहु नष्ट दुषामेश, कलिजुग लोग संपूर्ण अंधकार में जन्म लिए, पूरा संसार संपूर्ण अंधेरा है, और उसको प्रकाश देने के लिए क्या है, सूर्य। और ये सूर्य रूपी का साथ वर्णन किया गया, सूर्य का साथ तुलना किया गया श्रीमद् भागवतम। दुर्शामेश पुराण अर्क, अर्क पुराण का मतलब श्रीमद् भागवत को पुराण महापुराण कहा जाता है, और अर्क मतलब सूर्य, जैसा कोणार्क, इसी प्रकार नरक न अर्क, उसी प्रकार अर्क का अर्थ होता है सूर्य, पुराण अर्क अधुनादित, ये सूर्य का प्रकाश है श्रीमद् भागवतम। फिर क्या कहते हैं, कहते हैं सर्व वेदांत सरम ही श्रीमद भागवत मिश्यते तद अमृत तृप्तस्य नानेत्र स्याद रति क्वचित। सर्व वेदांत के सार है क्या है, श्रीमद भागवतम। इसलिए भागवत को ध्यान पूर्वक हमको श्रवण करना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूं, भागवत सुनना मतलब ऐसा नहीं मनोरंजन के लिए जाना नहीं, मंजन के लिए जाना चाहिए। मनोरंजन नहीं भागवत में, भागवत बहुत सारा जगह पे ताली बजा के बाद से नाचते हैं, दो मिनट नाच लिया और कुछ गीत गा लिया हो गया भागवत, ऐसा नहीं। और भागवत क्या है, बांकमय स्वरूप है, भगवान का वाणी रूप स्वरूप है श्रीमद भागवतम। और दूसरा अर्थ में कहते हैं तस्मा यदि हरे हे प्रीत्युत्पाद ध्यते मति ही श्रोतव्य निशम पुंभी पुराणम कृष्ण रूपेण। यदि भगवान को प्रसन्न करना है तब क्या करना पड़ेगा, यदि भगवान को प्रसन्न करना है मन में संकल्प हो तो सभी मनुष्य को निरंतर कृष्ण के अंगभूत पुराण को श्रवण करना चाहिए। इसलिए नवदा भक्ति में पहला अंग क्या है, श्रवण। विधुनोति सुहृत सताम, विधुनोति का अर्थ क्या है, विशेष रूप से धुलाती है। जीव हमें भगवान का नाम रटते हैं, क्यों कहा जाता है भगवान का नाम सुनते हुए करना चाहिए, नाम जब सुनते हुए करना चाहिए। कर्णरंध्र में प्रभु का नाम प्रवेश करके जिस प्रकार श्रीमद भागवत श्रवण क्यों कहा गया, क्यों भागवत में बारंबार कृष्ण का नाम आएगा, उसको वो जो कृष्ण नाम हमारे कर्णरंध्र में प्रवेश करके हृदय कमल को साफ करते जाएगा। इसलिए भागवत विशेष रूप का विधुनोति सुहृत सताम। फिर क्या कहते हैं, श्रीमद भागवत बैंकमय रूप कहा जाता है, कहते हैं जिस प्रकार संपूर्ण जगत को आलोकित करने के लिए भगवान स्वयं नारायण रूप में प्रकट होकर हमारे बाहरी अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार हमारे हृदय अंधकार को भीतरी अंधकार को दूर करने के लिए श्री हरि ही भागवत पुराण रूप में प्रकट हुए हैं। श्रीमद भागवतम की, इसलिए हमको भागवत को श्रवण करना चाहिए। पहले सब पूर्व पुरुष लोग को ये शास्त्र सब कुछ पढ़ते थे। अभी दो दिन का पहले कल तो महाराज का क्लास हुआ, परसों जो क्लास हुआ था कर्तृ प्रभु का क्लास था, उसमें माताजी के साइड में क्वेश्चन आया, आज के श्लोक में यही वर्णन है भगवान रामचंद्र यहाँ पे जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में और किम पुरुष वर्ष में भारत वर्ष में उपासना किया जाता है, उनको उपासना करने के लिए हनुमान जी है। तब यहां पे यही प्रश्न आता है, वो मन में प्रश्न आता है, भारत तो इतना पुण्य भूमि है, पुण्य भूमि होने का नाते इतने पाप कर्म क्यों किया जा रहा है, माताजी का क्वेश्चन था ये। मैं यहां पे यही क्वेश्चन को समाधान करना चाहता हूं, क्या है, पहले सब पूर्व पुरुष लोग सब कुछ पालते पालन करते थे सारा कुछ, अभी है नहीं, एक ही अंश मात्र में भी नहीं है। पहले समय में क्या है कि श्लोक में कहते हैं प्रातः काल द्यूत प्रसंगम मध्यान्ह च स्त्री प्रसंगम रात्रौ चोर प्रसंगात काल गच्छति धीमतः। किस प्रकार हमारा समय अपव्यय होता है अभी का टाइम पे, और पहले समय में कैसा समय को अपव्यय नहीं करते थे, ये शास्त्र का तो प्रमाण दिया जा रहा है। पहले सब पूर्व पुरुष लोग सब कुछ पालन करते थे सारा कुछ, कैसा कहते हैं प्रातः काल द्वित प्रसंगम, व्यक्ति सुबह उठता था क्या पढ़ता था, भगवद गीता द्वित प्रसंगम पहले समय पे, ये द्वित। लेकिन अभी पहले का समय अभी का समय में कितना अंतर है देखिए, यही आ गया प्रातः काल द्वित प्रसंगम, मतलब पहले समय पे प्रत्येक व्यक्ति गीता पढ़ता था, अपना बच्चे को भी पढ़ाते थे, लेकिन अभी है नहीं। अभी क्या है द्यूत प्रसंगम, अभी का समय में क्या है, सुबह उठते तो टीवी ऑन द्यूत प्रसंगम, न्यूज़पेपर द्यूत प्रसंग में आ गया, और मध्याने च स्त्री प्रसंगम, और मध्याह्न समय में क्या करते थे पूर्व पुरुष लोग, मध्याह्न समय पे रामायण पढ़ते थे, मध्याह्न समय में रामायण, स्त्री प्रसंगम इसमें भी स्त्री कथा आया है कि नहीं, भगवान
सीता जी की कथा आई ना, इसलिए स्त्री प्रसंगम, उसी टाइम पे वो चर्चा होता था। लेकिन अभी का टाइम में अभी सोचिए दोपहर में क्या होता है। तब फिर रात्र चोर प्रसंगात, और पूर्व पुरुष लोग रात को क्या पढ़ते थे, श्रीमद भागवतम चोर प्रसंगम, भगवान का माखन चोरी लीला को। भगवान कृष्ण तो माखन चोरी लीला करते, यहां पे भी वही है, कार्तिक महीने में चल रहा है हर चोर प्रसंग। अभी क्या कर रहा है, रात को क्या कर रहा है चोर काल गच्छति धीमता, इसी प्रकार समय अपव्यय हो जाता है। काल गच्छति धीमता, पहले समय में जो लोग इसी प्रकार जीवन में अपना आचरण करते थे, अभी है नहीं, इसलिए समय कितने तीक्ष्ण गति में चलता है। लोग भागवत तो सुनते नहीं और श्रवण भी नहीं करते, और आचरण करने का दूर की बात है। पहले सारा पूर्व पुरुष लोग करते थे। आप देखिए नॉर्मल एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, कोई माता लोग को बुराई नहीं मानना, आप लोग का हो सकता है आपका ऊपर आ रहा है, लेकिन बुरा नहीं मानना। पहले पूर्व पुरुष लोग को क्या करते थे, कभी भी माताओं लोग कभी भी घुंघट बाहर नहीं निकालते थे। घुंघट कभी भी, घुंघट बोलते हैं ना उड़िया भाषा में, इसको बोलते हैं ओढ़ोनी, हाँ इसको घुंघट बोलते हैं हिंदी में, वो कभी नहीं निकालते थे। अभी तो कुछ जगह पे संस्कार है, लेकिन अपना जो बच्चे लोग आ रहा है घुंघट डाल रहे नहीं, क्या है संस्कार, संस्कार है नहीं। इसलिए कहते हैं तीन चीजें बच्चे को शिक्षा देना चाहिए, पहले अच्छा शिक्षा, शिक्षा का साथ साथ संस्कार, संस्कार का साथ साथ संग, तब देखिए। और भक्तों लोग के लिए तीन चीज, पहले साधना, अच्छे से साधना करना, भगवान को प्राप्त करना है ना, भगवान को दिव्य दृष्टि से दर्शन करना है। जब तक दिव्य दृष्टि कैसा प्राप्त होगा, ये दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए तो हमें दामोदर अष्टकम प्रार्थना कर रहा है, भगवान का कृपा और प्रयास, दो अंगुली सटे जो था रसी, ये दो चीज, एक ही प्रयास जसोदा मैया का प्रयास थी और भगवान की कृपा, ये दो चीज। उसी प्रकार दिव्य दृष्टि कब मिलेगी ये कहने का है। लेकिन अभी का टाइम पे कोई घूंघट नहीं है, संपूर्ण खोलम खोला क्या। इसलिए कहते हैं भक्त लोग के लिए है साधना, साधना का साथ है सेवा। जब आप अच्छा से साधना करोगे ऑटोमेटिक आपका मन में विचार आएगा सेवा करने के लिए, ये गारंटी है, सेवा का उत्साह रहेगा। और वो साधना के साथ साथ सेवा, सेवा का साथ साथ है समर्पण भाव, समर्पण भाव, ये भक्तों लोग के लिए। तीन चीज अलग अलग कोटेशन कर दिया, बाहर के कर्मी लोग के लिए क्या है और भक्त लोग के लिए क्या है। तब यहां पे ये जो श्लोक है, आज का श्लोक में भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में सारा जगत को शिक्षा दिए, और ये मर्यादा को कभी उल्लंघन अपना जीवन में किया कभी नहीं। और भगवान को दर्शन करना है दिव्य चक्षु होना चाहिए, यहां पे यही प्रमाण देकर कहते हैं, भगवान को जिनका विशुद्ध रूप भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। भगवान को देखना है तो विशुद्ध चेतना होना चाहिए, जब तक विशुद्ध चेतना नहीं है कैसे देख सकते हैं। आप देखिए हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज दोनों साथ में बैठे, और प्रहलाद महाराज को दिव्य चक्षु में दिखाई दे रहे प्रभु है, और हिरण्यकशिपु कितना चश्मा लगाया नहीं देख पाया। फिर कृष्ण अर्जुन दोनों रथ पे है, कृष्ण अर्जुन दोनों रथ में है, लेकिन अर्जुन क्या सोच रहा है, मेरा सखा है, मेरा मित्र है कि नहीं, फ्रेंडशिप करा रहा है, हैंडशेक भी कर रहा है, गले पे कांध में हाथ डाल रहा है, और भगवान दिव्य दृष्टि दिए, देख लो मेरा स्वरूप को। और फिर अर्जुन तब जाके प्रार्थना करता है, परम ब्रह्म परम धाम पुरुषम पवित्र भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभम, भगवान के अंदर सब कुछ दर्शन करता है। तब ये कहना मतलब है दिव्य चक्षु भगवान से ही आते हैं, और भगवान को दर्शन करना विशुद्ध सतस्तर पर जब आएंगे। हम तो प्रत्येक दिन प्रयास कर रहा है लेकिन प्रयास में हमें सफल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सारा कुछ में किस चीज में कुछ गड़बड़ी है लेकिन हमको खुद को नहीं दिखाई दे रहा है, और वो देखने के लिए गुरु होते हैं और गुरु ही देख कर बता देते हैं। इसलिए गुरु का चरण पे आश्रित होना चाहिए। इसलिए कहते हैं हनुमान जी, आप लोग प्रत्येक भक्त हनुमान का चालीसा पाठ करते हैं। मेरा टाइम बहुत फास्ट में जा रहा है, मैं जो बताने के लिए आया आपका पास है बहुत टाइम फास्ट जा रहा है। हनुमान चालीसा पहले आप लोग जब कृष्ण कॉन्शियसनेस से भक्त नहीं बने थे, बहुत सारे लोग हनुमान चालीसा पाठ करते थे ना, बहुत सारे भक्त लोग। पहला श्लोक क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बर नौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारी। क्या अर्थ है इसका? गुरु महाराज के चरण कमल की धूलि से अपना मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुबीर के निर्मल जस का वर्णन करता हूं। जो चारों फल क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का देने वाला है। इसलिए गुरु का चरण आश्रित तो होना पड़ेगा। इसलिए और वो गुरु का चरण आश्रित तो होके उसका गुरु का वचन को सुनना पड़ेगा, और सुनकर जब आप सेवा में लग जाओगे तब क्या होगा? मनोरूपी दर्पण को पवित्र, इसमें गंदगी पड़ा है ना वो। फिर दूसरा श्लोक में कहते हैं बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोही हर हूं कलेश विकार। मैं आपको सुमरण करता हूं इसीलिए आप तो जानते ही है, भगवान तो जानते ही है कि मेरा शरीरी और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुख और दोषों का नाश कर दीजिए, ये मैं प्रार्थना कर रहा हूं। तब दूसरा हमें टॉपिक पर जाते हैं। भगवान यहां पे अवतार लेते हैं, और अवतार किसके लिए होता है, क्यों अवतार लेते हैं, क्या कारण है? मेरा कभी सेमिनार होगा था उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। 5 दिन का सेमिनार है अवतार, 24 अवतार भगवान क्यों लिए, लेकिन शास्त्रगत प्रमाण के अनुसार 41 अवतार है। कितने भक्तों को मालूम है 41 अवतार है? नहीं सभी लोग मालूम है। 10 अवतार सूत्र गान करते हैं, फिर भागवत में 24 अवतार के बारे में आपने सुना है, और प्रभु जी 41 अवतार कहां से लाए? 41 अवतार रहता है लेकिन नाम नहीं बता रहा हूं कभी कुछ। एक ये होता है कल्प अवतार, जो कल्प अवतार में 25 आते हैं, और मनंतर अवतार उसमें आते हैं 12, और युग अवतार में कितना है? 4। टोटल देखिए 25, 12 और 4, ये टोटल मिलाएंगे तो 41 अवतार। इसका वर्णन आगे जाकर करेंगे। और भगवान अवतार क्यों लेते हैं, अवतार लेने का उद्देश्य क्या है, उसमें बहुत सारा मेंशन किया जाता है, लेकिन मेन उद्देश्य दो के लिए भगवान ये धरती पे अवतार लेते हैं। क्या क्या है? सभी को मालूम है भगवद गीता का परित्राणाय साधुना विनाश दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे। तब ये श्लोक आता है, भगवान परित्राणाय शब्द पहला लिया है, पहले दुष्ट को मारने का ये नहीं, साधु को रक्षा करना है। दुष्ट लोग ऑटोमेटिक मर जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा, जैसा प्रहलाद को बचाए हिरण्यकश्यप कुमार है, एक ही साथ में एक ही बाण में दो निशान होता है, दो काम होता है। इसलिए कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि बढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान इसीलिए लेते हैं ये क्षेत्र पे धरती पे, जब असुर बढ़ जाते हैं और धर्म का जगह पे अभिमानी अधर्म परिव्याप्त होता है। इसलिए कहते हैं करही अनिति जाई नहीं बरनी सदही विप्र धेनुसुर धरनी तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा। तब इसी के लिए भगवान अलग अलग शरीर लेते हैं, हरही कृपा निधि सजन पीरा। भगवान अलग अलग का रूप इसीलिए लेते हैं क्योंकि अधर्म परिव्याप्त हो जाता है, दुष्ट लोग आ जाते हैं और क्या करते हैं, असुर लोग को सारा जगत में फैल जाते हैं। तो भगवान धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए, साधु को सुरक्षा देने के लिए ये धरती पे भगवान अवतार लेते हैं। अवतार के बारे में तो बहुत सारा यह से टाइम पूरा 5 मिनट रहा, इसमें एक छोटी से एक कहानी बता के इसको समाप्त करूंगा क्योंकि समय बता गया है, लेकिन अवतार के बारे में बताने के लिए था। अवतार का भगवान जब ये धरती पे लेते हैं, अवतार फिर दो प्रकार की होता है, एक ही स्वद्वारक अवतार और एक अद्वारक अवतार। स्वद्वारक अवतार कहते हैं जब वो पिता माता का संरक्षण में आते हैं, इसको स्वद्वारक अवतार कहते हैं, और अद्वारक अवतार इसलिए कहते हैं जिसका पिता माता नहीं होते हैं। आप बता सकते हैं इतने 26 अवतार में कितने लोग का पिता माता है और जिसका पिता माता नहीं है? जैसा नरसिंह देव, उनका पिता माता कौन है? मछली, उनका पिता माता कौन है क्या? कच्छप, उनका पिता माता है नहीं? तब ये सब अद्वारक अवतार कहा जाता है। और स्वद्वारक अवतार जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उनको स्वद्वारक अवतार कहा जाता है। तो लास्ट में बताना चाहता हूं जो हनुमान जी को किस प्रकार भगवान का दर्शन, भगवान किस प्रकार दर्शन दिए, और इसके लिए जब समुद्र मंथन हुआ, रावण ने सारा धन को इकट्ठा करके रखा था, हनुमान का और विभीषण इकट्ठा कर रहे हैं, इकट्ठा करने का टाइम पे विभीषण स्वयं वो सारा चीज में माला बनाने चालू किया, और सब डायमंड था। और जब माला बनाई, वो बनाने के बाद क्या कि विभीषण सोचने लगा, ये माला रावण पहनने का लायक नहीं है, ये माला किसको पहनाऊ? भगवान राम को। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनका राज अभिषेक का टाइम पे ये माला पहनाओ। तो विभीषण राज्य अभिषेक का टाइम पे माला लेकर गए और माला भगवान राम के गले पे डाल दिए। भगवान राम देखे बहुत सुंदर हार है, लेकिन मन में सोचे इसको मैं नहीं पहनूंगा। लेकिन सारा शौकिनी होते हैं कौन? राम का साथ कौन बैठे थे? माता सीता। क्यों? माता लोग को सारा शौकिनी होता है ना, गोल्ड पहनने के लिए, डायमंड पहनने के लिए। तो भगवान रामचंद्र ने क्या किए, वो गले का हार को निकाल के माता सीता का गले पे डाल दिए। माता सीता सोचने लगे, बोले मेरा पति भी नहीं पहना, मैं इसको पहनने का लायक नहीं हूं, मैं इसको उतार के और उनका चरण कमल पर बैठी कौन है? भक्त प्रवर हनुमान, हनुमान का गला पे डाल दिए माला को। और हनुमान जी सोचने लगे, हनुमान जी सोचने लगे प्रभु मेरा पहने नहीं, जाने की माता जाने की नहीं पहने, तब मैं इसको पहनूं। और टुकड़ा करने लगे, क्या करने लगे? टुकड़ा करने लगे। जब टुकड़ा करने लगे, सारा सभागृह में जितने सब लोग बैठे थे वो सोचने लगे। सुग्रीव पहले सोचा, बोला प्रभु ये बंदर को क्यों दिया, मैं प्रभु को तो बहुत सहायता किया, बहुत सहायता किया, मित्र बनाई इसीलिए, लेकिन होने का नाते प्रभु ये माला मेरा को देना चाहिए था। सुग्रीव ऐसा सोचने लगा, सब अलग अलग सोचने लगे। लास्ट में विभीषण भी सोचा, विभीषण सोचा मैं मेरा भाई हो ना, विभीषण सोचने लगा, बोला मैं प्रभु का दास बनकर आया सेवा करने के लिए, प्रभु के लिए मैं इतने दूर से लेकर आया था, प्रभु बंदर को नहीं देके मेरा को दे सकते थे ना महाप्रसाद का रूप में। हम जब माला भी चढ़ाते हैं, हम बोलते हैं ना भगवान को माला देने का टाइम पे, प्रभु मिल जाए माला, प्रसाद चढ़ाने का पहले प्रभु मेरे को प्रसाद चाहिए ना, चढ़ाए नहीं चढ़ाए पहले प्रसाद चाहिए। उसी प्रकार विभीषण का मन में ये विचारा, विभीषण सोचने लगा। ये जब सोचा तो बहुत सारे लोग उसमें थे, सब सोचने लगे। नल नील भी सोचे, बोले देखा हम लोग इतने मेहनत किया, पत्थर का ऊपर राम का नाम लेके सारा कुछ, समुद्र का ऊपर पोल भी बांधा, इतने परिश्रम करने का बाद भी माला हमको नहीं मिली, बंदर को मिला है। अब बंदर की जानता है डायमंड का कीमत कितना है, और टूट तोड़ रहा है। तब हनुमान जी कहने लगे, मैं जात में बंदर हूं लेकिन ज्ञान में नहीं हूं। विभीषण पूछे, सभा में बैठे हैं, विभीषण पूछे, बोले क्यों तोड़ रहे हो, ना जानते हो जहां पे राम नहीं है मैं इसको वो कोई काम का नहीं है, जिसमें राम है वो काम का है, इसीलिए ये माला का अंदर राम है कि नहीं, और हर दाना में राम है कि नहीं, मैं उसको ढूंढ रहा हूं कहां पे राम है, और जहां पे नहीं है उसको तोड़ के फेंकता हूं, जिसमें है इसको रखता हूं। तो विष्णु पूछे, तो आपका शरीर में ये जो शरीर क्यों रखा है, ये शरीर में राम है क्या, ये शरीर क्यों रखा है? हनुमान जी का विश्वास, और हनुमान जी हर कोणा में प्रभु का दर्शन कर रहा है, सेवा में नियुक्त है। हनुमान जी की कथा कहने का है, भगवान स्वयं कहते राम आप लोग को माला इसलिए नहीं दिया, और हनुमान जी को दिया, हनुमान जी कुछ भी वरदान नहीं मांगा, निष्काम भक्ति किया। निष्काम भक्ति करने के नाते मेरा को पता लग गया, मैं इसलिए उसको माला दिया। और हनुमान जी को जब भीष्म पूछे तो पूछने के नाते क्या कहे, बोले शरीर में है मेरा प्रभु, मेरा रोम कोण कोण में प्रभु विराजमान है, आप देखना चाहते हो सारा व्यक्ति का चश्मा निकालो, जैसा इधर बंदर चश्मा निकाल देता है, इसलिए बोला सभी का चश्मा निकाल दो। पहले समय चश्मा था कि नहीं था प्रभु पता नहीं है, लेकिन सभी बोला चश्मा निकाल दो, बोला देखना चाहते हो, ठीक है देखना चाहते है। तब क्या किए, हनुमान जी अपना सीना को फाड़े, फाड़ कर क्या किए, दर्शन दिलाए, रत्न हृदय कमल पे विराजमान है कौन, राम का साथ है सीता। ये होता है दर्शन का, इसलिए दिव्य दृष्टि उनसे प्राप्त होता है। ये कहने का अर्थ है हम लोग भगवान से प्रार्थना करना चाहिए दिव्य दृष्टि दें, जो कि हम आपका चरण कमल को अच्छे से दर्शन करें और आपका सेवा में हमें नियुक्त रहें। सेवा करते करते हमारा प्राण से प्रभु आपका नाम रटते रटते हाँ परम धाम को प्राप्त कर लें। और कार्तिक महीना है, आप इतने इतने दूर से आए हैं, यही काम सभी का होना चाहिए। और दूसरा सूचना है, आप लोग जहाँ जहाँ भी रहते हैं प्रचार को आगे थोड़ा बढ़ाना है, सभी लोग का कर्तव्य होता है प्रचार कैसा तेजी गति में बढ़ना चाहिए। हमारा इस्कन बहुत सारा जगह में खोला गया लेकिन बहुत धीरे स्लो चल रहा है, तेजी गति में प्रचार होना चाहिए। प्रभुपद ने क्या नहीं दिया हम लोग के लिए, प्रभुपद का बारंबार गुणगान करना चाहिए, क्योंकि प्रभुपद ही आपको पीछे से धक्का लगा रहा है, जाइए प्रचार में। इसी प्रकार हर मैनेजमेंट को हमारा तरफ से अनुरोध है, जो कि हर मैनेजमेंट है, इसी प्रकार हर भक्त को उत्साह का साथ बाहर भेजना चाहिए, जहां पे प्रचार नहीं हो पा रहा है, जहां पे लोग अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, उनको जगाना है, उनको क्या करना है, जगाना है। इसलिए बहुत सारे लोग का आज भी रिक्वेस्ट है मेरा शाम को एक स्काइप में लेक्चर देने के लिए, जो कंट्री में हमारे भारतीय लोग नहीं जा पाते हैं वहां पे लोग को सुनने के लिए बैठे हैं, शाम को वहां पे स्काइप में देना पड़ेगा। जो लोग मुसलमान टोटल सुनते नहीं और भारत के लोग वहां पे रह रहे हैं, वहां पे प्रचार कर रहा है, जैसे आप लोग सुने हैं पाकिस्तान के लोग आए थे, प्रचार धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए ज्यादा स्पीड में होना चाहिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, शिष्य वृंदावन धाम की, सुनने वाले भक्त वृंद की जय जय श्री राधे श्याम।